शान जल्दी से रेडी होकर नीचे चला आया, एक उड़ती नजर हॉल में डाली और वहां कहीं आरवी को ना पाकर चैन की सांस लेकर बाहर लॉन में चला आया, जहां इस वक्त सुयश जी के साथ सुभाष जी भी मौजूद थे। वो भी उनके पास आकर बैठ गया और थोड़ी बहुत बातों में हिस्सा लेने लगा। कुछ देर बाद ही छाया उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ गई। अंदर जाना मतलब आरवी को फेस करना, ये सोचकर ही शान ने एकदम से खड़े होते हुए कहा, बड़े पापा, डैड, आप दोनों जाकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा, मैं वहीं ब्रेकफास्ट कर लूंगा। उसकी बात सुनकर दोनों ने हैरानी से उसको देखा। सुभाष जी ने तुरंत ही एतराज जताते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम है बेटा कि 2 मिनट अपने परिवार के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते आप? खाना लग चुका है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर जाकर सारा दिन आपको काम ही करना है। शान ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही सुयश जी ने सुभाष जी की बातों से सहमति जताते हुए कहा, 10 मिनट में कुछ नहीं होता बेटा, सुभाष ठीक कह रहे हैं, चलकर नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद तो सारा दिन आपको काम ही करना है। बेचारा शान जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आरवी को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे, पर अपने दोनों बड़ों की बात वो काट ना सका और थके कदमों से अंदर चला आया। डाइनिंग एरिया में पहुंचते ही उसकी निगाहें सामने खड़ी आरवी पर चली गई, जो टेबल पर सामान ठीक से रखवा रही थी। शान ने उसको देखते ही हड़बड़ाहट में कदम पीछे हटाने चाहे, तो पीछे से आते सुयश जी से टकरा गया। उसने तुरंत पलटकर उन्हें सॉरी कहा, वहीं सुयश जी उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को देखकर परेशानी भरे लहजे में बोले, बेटा आप ठीक तो हैं? इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? इस मौसम में भी आपको पसीना आ रहा है? शान ने उनका सवाल सुना तो तुरंत ही अपनी हथेली से अपने माथे के पसीने को पूंछ लिया और इनकार में सर हिलाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। आज मौसम सुहावना था, उस पर घर में ठंडक होने के बावजूद जब उसने गर्मी लगने की बात कही तो सुयश जी अजीब नजरों से उसको देखने लगे। वहां मौजूद सबकी निगाहें इस वक्त उसी पर ठहरी हुई थी। इस बार सुभाष जी ने उसको देखकर कहा, बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं आज आप, सच में आप ठीक है ना? अजीब व्यवहार का जिक्र होते ही शान और आरवी दोनों को रूम वाली घटना याद आ गई और दोनों की निगाहें एक दूसरे की तरफ घूम गई। निगाहों के टकराते ही जहां शान ने हड़बड़ाहट में उस पर से निगाहें हटा ली, वहीं आरवी की पलकें शर्म से झुक गईं और रुखसारों पर हया की लाली फैल गई। उसके बगल में खड़ी छाया की नज़र जब उसकी कश्मीरी सेब की तरह लाल गालों पर गई, वो हैरानी से बोल पड़ी, भाभी अब आपको क्या हुआ? उसके शब्दों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आरवी ने चौंक कर अपने माथे पर हाथ लगाते हुए घबरा कर कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके गाल टमाटर जैसे लाल क्यों हो रहे हैं? छाया उसके दोनों गालों को देखने लगी। बाकी सबने भी आरवी के चेहरे की तरफ निगाहें घुमाई। वहीं आरवी ने उसकी बात सुनी तो झट से अपने गालों को अपनी हथेलियों से ढकते हुए इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं तो वो बस ऐसे ही। उसको समझ नहीं आया कि क्या कहे। वहीं छाया ने खुद ही दिमाग दौड़ाते हुए कहा, भाभी कहीं आपको भी भैया की तरह गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने देखा है जो लड़कियां एकदम गोरी चिट्टी होती हैं, गर्मी से उनके गाल ऐसे ही लाल हो जाते हैं। आरवी को तो वजह समझ नहीं आई, पर जब छाया ने खुद ही वजह बता दी तो उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ यही बात है, मुझे गर्मी लग रही है इसीलिए गाल लाल हो गए होंगे, और कोई बात नहीं। शान ने तिरछी निगाहों से उसको देखा, वहीं आरवी ने भी चोर निगाहों से उसको देखा, फिर अपनी निगाहें फेर ली। अर्पिता जी ने अनु के साथ ठीक इसी वक्त वहां कदम रखा और सबको यूं खड़े देखते हुए कुछ हैरानी से बोली, क्या बात है, आप सब अब तक यूं ही खड़े हैं? किसी और का भी इंतजार हो रहा है क्या? शान जो कब से इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का तरीका ढूंढ रहा था, उसने तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, चलिए ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। वो झट से अपनी चेयर पीछे खींचकर उस पर बैठ गया। सुयश जी और सुभाष जी ने अजीब तरह से उसको देखा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे और जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। अंशु को शान ने अपने पास बिठा लिया। आरवी ने छाया के साथ मिलकर सबको खाना सर्व कर दिया और खुद अंशु के दूसरे तरफ बैठ गई। शान सर झुकाए खाना खा रहा था और आरवी अंशु को खिलाते हुए खुद भी थोड़ा थोड़ा खाना खा रही थी। दोनों के मन बेचैन थे पर चेहरे पर शांत भाव थे। खामोशी से सबने नाश्ता किया। उसके बाद शान सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बीते रात वो एक फाइल लाया था जो ऊपर ही रह गई थी, वही लेने वो ऊपर गया था। वही आरवी भी अंशु का स्कूल बैग लेने ऊपर गई हुई थी, पर शान इस बात से अनजान था क्योंकि वो बाहर से लौट कर आया था। वो आरवी के सामने आने से बच रहा था, इसीलिए अपना नाश्ता खत्म करते ही वहां से निकल गया था। आरवी रूम में अंशु के बैग में उसकी बुक्स और नोटबुक डालकर जैसे ही पलटी, रूम में घुसते शान पर उसकी नजर पड़ गई। शान की निगाहें भी अनायास ही उसकी तरफ घूम गई। एक बार फिर दोनों की निगाहें टकराईं और उन्हें वो पल याद आ गया, जिससे दोनों ही असहज हो उठे। दोनों ने तुरंत अपनी निगाहें घेर ली। इत्तेफाक से शान की फाइल भी वहीं रखी थी तो उसने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए और इस बात से अनजान आरवी को लगा कि वो उसके पास आ रहा था। शान की अपनी तरफ बढ़ते कदमों के एहसास के साथ ही उसकी धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। वो निगाहें झुकाए वहां खड़ी थी और घबराहट के मारे अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में बीछे जा रही थी। शान ने तो एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था।
वो जैसे ही आरवी के पास पहुंचा, आरवी ने तुरंत हड़बड़ाहट में दूसरी दिशा में कदम बढ़ा दिए, पर वो बस एक कदम आगे बढ़ ही पाई थी कि शान की आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। सुनो, यही वो शब्द था जिसने आरवी के बढ़ते कदमों को रोक दिया था, पर वो पलटने की हिम्मत न कर सकी। वो कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे नीचे जाना है, अंशु को स्कूल के लिए देर हो जाएगी तो मुझे जाना होगा। इतना कहकर उसने जल्दी से कदम आगे बढ़ाए, पर उससे ज्यादा फुर्ती से शान आगे बढ़ा और उसने उसकी कलाई थामकर उसको रोक लिया। आरवी का दिल धक से रह गया, सांसें अटक गईं, थूक निकलते हुए उसने अपना गला तर किया ताकि कुछ कह सके, पर जबान ने उसका साथ ही नहीं दिया। लब हिले तो सही, लेकिन आवाज बाहर ना आ सकी। उसने यूं ही खड़े हुए अपनी कलाई उसे आजाद करवाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश के साथ शान की पकड़ और ज्यादा कसती जा रही थी। आरवी वहां से भाग जाना चाहती थी, पर वो हिल तक न सकी और उसने बेबसी से अपनी आंखों को भींच लिया। इसके साथ ही शान की आवाज उसके कानों में पड़ी, आरवी मुझे कुछ बात करनी है, जो हुआ मतलब मैंने जो किया तुम्हारी मर्जी के बिना, मैं जो करने जा रहा था पता नहीं कैसे हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, वो जो मैं करने जा रहा था अनजाने में हो गया, मुझसे नफरत मत करना, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे करीब आया, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अनजाने में ही सही पर गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो शान बड़ी हिम्मत करने के बाद किसी तरह अटकते हुए अपने दिल की बात उसे कह रहा था। वो सच में शर्मिंदा था और उसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था। उसने जैसे ही आखिरी का शब्द कहना चाहा,
आरवी जिसका चेहरा दर्द से सना था और जो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, वो एकदम से आंखें खोलते हुए उसकी तरफ घूम गई और शान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके लबों पर अपनी हथेली रखकर उसको खामोश कर दिया। पहले तो शान अचानक उसके ऐसा करने से चौंक गया, पर जैसे ही उसकी निगाहें आरवी के दर्द से सने चेहरे पर पड़ी, वो स्थिर होकर खड़ा हो गया और उलझन भरी निगाहों से आंसुओं से लबालब भरी उसकी आंखों को देखने लगा और उसकी उदासी और इन आंसुओं की वजह को समझने की नाकाम सी कोशिश करने लगा। टू बी कंटिन्यूड।